ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवत क्रम के अनुसार पंचम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। तो ये गद्य है इसलिए उच्चारण मात्र कर लेते हैं। क्वचिच्च दुख सहेन कायाभ्यंतर बलहीना गृहीत सार स्वकुटुंबाय कृद्यते। क्वचिच्च और कभी कभी दुसहेन असह्य कायाभ्यंतर बलहीना शरीर के अंतर्गत क्षुधा तथा पिपाशा की अग्नि के कारण गृहित सार धैर्य चूकने पर स्वकुटुंबाय अपने ही कुटुंबियों के प्रति क्रुद्धते क्रुद्धित हो जाता है, इस प्रकार नाराज होता है। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा, कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना व्याकुल हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज विद्यापति ठाकुर का गीत की एक पंक्ति कोट किए हैं। तातल सैकते बारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाज, कुटुंब जीवन के सुख की तुलना मरुस्थल में जल बिंदु से की गई है। कोई भी प्राणी कुटुंब जीवन में सुखी कभी नहीं रह सकता। वैदिक साहित्य सभ्यता के अनुसार कोई चाहकर भी कुटुंब जीवन के उत्तरदायित्वों को छोड़ नहीं सकता, किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति तलाक के द्वारा पारिवारिक जीवन का परित्याग कर रहे हैं। इसका कारण परिवार की दयनीय व्यवस्था है। कभी कभी कष्टमय स्थिति के कारण मनुष्य अपने प्यारे पुत्रों पुत्रियों पत्नी के प्रति अत्यंत निष्ठुर बन जाता है। यह सांसारिक जीवन की दावाग्नि का अंग रूप है। हम अज्ञान निरंधस ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुद्धपादकमलं श्रीगुरोर्नवश्नवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता शिवशाखन्वितं। मुखम करौति वाचालम् पंगुमलं गजत गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् श्री गुरुनदिन तारिणम्। जयतं सुरत पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्यप्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्दे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। पंखा चल सकता है? यद्यपि इंद्र महाराज की आज कृपा हो गई है लेकिन इस पर भी बस ठीक है। अगर स्लो रहेगा तो बहुत बढ़िया है, वो फास्ट है। क्वचिच दुसहेन कायाभ्यंतर बलिना घृत सारह सकुटुंबाय क्रुद्यति। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाठ ये भवातवी का जो वर्णन भरत महाराज ने राजा रघुगुण को सुनाया था, तो उनका अर्थ हम सब लोग के लिए कृपा करके सुखदेव गोस्वामी पाठ बता रहे हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न पर उसमें से ये 19वां श्लोक है, थोड़ा कल का श्लोक भी देखें। कहते क्वचित गृह आश्रम कर्म चोदना अति बर गिरी आरुक्षमाणो लोकव्य सनकर्षित मनः हरकंटक शर्करा क्षेत्रम प्रविशन इव सिद्धति। कल जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके आश्रम में रहते हुए बहुत भारी भारी बड़े बड़े कर्म व्यक्ति को संपन्न करना होता है, वे संपन्न करने के लिए बाध्य है। अब चाहे उनके पास हो न हो ये कोई देखते नहीं है, लेकिन अगर विवाह उत्सव इत्यादि ठीक से संपन्न नहीं कर पाए तो लोक निंदा का कारण बनता है। और कभी कभी ज्यादा कर्ज लेकर के करके भी व्यक्ति की जान भी व्यक्ति गवा देता है, क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति से कर्ज लेकर के भारी कर्ज लेकर के विवाह किया है बच्चे और बच्ची का, तो इसके कारण बहुत भारी कर्ज के कारण व्यक्ति कभी कभी आपघात भी कर लेता है। यह तो संसार में देखा गया है। तो कितना त्रस्त व्यक्ति हो रहा होगा कि जो आपघात की ओर बढ़ता है। इसलिए कहते अति बर गिरिम आरुक्ष मानो, वो बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने के तुल्य है उन लोग के लिए जो लोग के पास धन नहीं है। लेकिन धन है क्या वो आरामजनक स्थिति में है? बोले ना। चूंकि धनी व्यक्ति भले ही खर्च कर दे लेकिन बाद में शोक उठता रहता, अरे भारी खर्च हो गया, इतना नहीं करना चाहिए था, दिखावे में ज्यादा पड़ गया मैं, तो शोक से जलता है, जलना ही है। चाहे लोग निंदा के भय से अथवा अपने धन की कुछ कटौती के कारण, कुछ कम हो जाने के कारण उनको रोना पड़ता है। तो एक गृहस्थी बहुत भारी एक टेंशन है, वो बहुत बड़ा बोझ है उसको लेकर, लेकिन व्यक्ति सुख से उठाने के लिए तैयार। जानते हैं क्यों? वो केवल क्षणिक सुख के लिए बस, और कोई बात नहीं। थोड़ा सा सुख उनको मिलता है, वो इतना बड़ा टेंशन लेकर के उन बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करते रहते हैं। कहते सनक कर्षित मना कंटक सर्क राक्षेत्रम प्रविशन इव सिद्धि। जिस प्रकार कोई व्यक्ति खुले पैर अगर कंटक के वन में चला जाए, उनको जितना दुख होता है उससे कहीं ज्यादा पैन इससे होता है, लोक निंदा से वो बहुत भारी पैन होता। वो तो कंटक के द्वारा छिदा हुआ पैर वो तो ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा कष्ट का बात नहीं है। लेकिन मन जिसका छिद जाता है, उनका घाव रुझने में बहुत समय लगता है। जब भी व्यक्ति सामने आता है, याद आ करके बोले यही निंदा किया था, जलाने लगता। कल हम लोग उनकी व्याख्या को सुन चुके और आज कहते हैं क्वचित दुस्सहेन काया अभ्यंतर बलिना। कहते हैं भीतर की अग्नि के कारण वह व्यक्ति जो नहीं सहन करने योग्य भूख लगती है तो अपना धैर्य गवा देता है। कहते हैं गृहित सार, सार वस्तु जीवन में धैर्य है। धैर्यवान व्यक्ति बहुत कुछ कर पाएगा, लेकिन जो धैर्य नहीं रखते हैं उनको पग पग पर पछताना होता है, रोना होता है। और शास्त्र में तो ये बताई गई बात है कि जो देहधारी जीव है तो उनकी तो सड़ उर्मियां हैं। क्या क्या छह प्रकार की उर्मियां हैं शास्त्र में बताते, कहते बुभुक्षाश्च पिपासाश्च प्राणस्य मनसः न स्मृतो शोक मोह जरा मृत्यु देहस्य इति सड़ उर्मया। सर्व उर्मय देहस्य इति, इस देह की छह उर्मियां हैं। इस देह में छह उर्मी, उर्मी नाम तरंग, जैसे सागर में उर्मी उठती है, तरंगे उठती है, इस प्रकार इस शरीर में कुछ तरंगे उठती है, छह गिना रहे हैं शास्त्र। कहते हैं कि जो भीतरी है वो उर्मी प्राण और मन से उत्पन्न है, दो दो तीन की छह होती है, षडुर्मय छह उर्मी होती है। कहते बुभुक्षाश्च पिपासा, ये प्राण में उठती है, भूख और प्यास, प्राण तड़पने लगता है। जब प्यास और भूख व्यक्ति को लगता है, ये एक उर्मी है, एक तरंग है, बुझ जाएगी। कुछ खाना डालने से, कुछ जलपान करने से वो बुझती है, लेकिन सदैव थोड़ी बुझती रहेंगी, वो तो उठती रहती है। जैसे कोई सागर में पड़े हुए व्यक्ति उन तरंगों से उठने पर बहुत बहुत कष्ट महसूस करता है, उसी प्रकार जीव इस संसार में इन तरंगों से तरंगायित होते हुए खूब दुख भोगता है। तो ये तो हो गई प्राण की, और मनसः स्मृतो, तो दो मन की है, क्या शोक और मोह, ये मन की तरंगे है। शोक किसको कहते हैं? भूतकाल में जो घटना घट चुकी है और वर्तमान में इनके लिए रोना, उनको शोक बोलते हैं। वो तो बीत चुका है, उनकी चिंता क्यों करना है। लेकिन अविवेकी व्यक्ति, जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं रहता है, वो व्यक्ति ही बीती हुई बात पर वर्तमान में शोक करता है। इसलिए वर्तमान में जो सुख होता है वो भी उनको भी ठीक से भोग नहीं पाता है।
इच्छुक है। भय का कारण तो बहुत बताया गया। मोह किसको कहते हैं? जो वर्तमान में उठता है, मन की एक दूसरी तरंग को मोह कहते हैं। वो वर्तमान में उठता है, जैसे किसी के पास बैंक बैलेंस है, वो व्यक्ति सोचता है बस मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, चाहे इतना धन मेरे पास है। लेकिन बिगड़ने में देर थोड़ी लगता है, धन थोड़ी बचाएगा व्यक्ति को, धन नहीं बचाता। लेकिन एक मोह होता है व्यक्ति को कि मैं बच जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, मेरे पास इतनी पहचान है, मेरी पहुंच है, ये सब सोचते हैं। इसको मोह। और जब पहचान वाले व्यक्ति के पास जाते तो हाथ ऊपर कर लेते, बोले मेरी पहुंच वहां नहीं है, फिर रोते हैं, अरे अरे मैं तो सोच रहा था, मैं तो सोच रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस बचाएगा। बचाने वाले कोई है तो केवल भगवान का नाम है संसार में, और कोई वस्तु व्यक्ति को नहीं बचा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन वो लेना रास नहीं आता है, वो मन को भाता नहीं है, वो कटु लगता है। जब भी जपमाला हाथ में लेते हैं तो मन पता नहीं कहां भाग जाता है, बोले भागो भागो, इधर से हमला होने वाला है, वो बचने के लिए मन भागता है, क्योंकि भागो यहां से तो मार देगा ये। बुद्धिमान व्यक्ति उस मन को पकड़ करके बिठाता है, बैठो सुनो, इसको सुनो, बहुत परेशान करके रखा है, अभी थोड़ा परेशान तुम हो, बहुत मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत सुंदर उनकी व्याख्या देते हैं, उनके दो श्लोक मेरे पास है, हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये है शोक और मोह मन में उठने वाली तरंग है, और दूसरी एक तरंग है जो एक उठ चुकी है और एक बाकी है, वो है जन्म की उठ चुकी है, उस लहर में हम लोग बस डूबते उतारते रहते हैं सुख और दुख में, कभी अंदर कभी बाहर, मरी हुई मछली की तरह वो डूबते उतारते, कुछ कोई काबू नहीं है कहीं पर, कोई दुख के ऊपर कोई काबू नहीं, फेंक दिया किसी को समुद्र में, बस अभी मेहनत करो, और तरंग उठती है, तो एक तरंग उठ चुकी है जन्म की, ये कायिक तरंग है, और हमारे जैसे बूढ़े व्यक्ति जो बैठे उनकी अभी समित होने जा रही है, बाद में एक दूसरी उठेगी, क्या मरण, एक दूसरी तरंग को झेलना है, तैयारी करना चाहिए, इधर डूबना उतारना नहीं चाहिए। अपने से जो लोग जिंदा मछली होती है ना, खूब आवागहन करती है, खूब आनंद लेती है, भाई वो जिंदा है, लेकिन मरी हुई मछली जब कोई ऊपर उठाता है पकड़ करके, तो थोड़ा थोड़ा उनको लगता है ठीक, या प्रकृति ऊपर ऊपर उठा देती है, कुछ धन संपत्ति, कुछ पुत्र परिजन का विवाह में सक्सेस हो गया, वाह वाह हमारा बस, जबकि करता वो नहीं है, उनके दूसरे जन्म के कर्म के कारण व्यवस्था प्रकृति करती है, ठीक है इनको इतना व्यवस्था दे दो, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ शादियां कराई है तो उनके बेटे की अटकनी नहीं चाहिए, तब व्यक्ति सोचता है वाह मैं सक्सेस हूं और मैं कितना बड़ा आदमी, तब गर्व उत्पन्न होता है। ये सारे रिपू, ये जो दुश्मन हमारे हैं, वो पथ के पथिक लुटेरे संयुक्त होकर के जो जीव को लूटता है। हम लोग उनकी व्याख्या करते हैं, जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पद का बहुत सुंदर श्लोक लिखा है मैंने। खैर, तो ये मृत्यु है, तो इस प्रकार इसमें हम लोग इस बवाटवी में फंसे हुए हैं। और ये छह प्रकार की तरंग तो होती है, उनके अलावा यहां दुश्मन बहुत होते हैं, और उनके अलावा प्रत्यक्ष निंदुक लोग होते हैं। सब व्याख्या हो चुका बहुत काफी, और आगे होना बाकी है। इसको जगदीश ठाकुर कहते हैं कोई क्रमविद उनको गिना नहीं सकते, उतना भी पत्ती है संसार में कोई गिना नहीं सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पर जहां तहां से कुछ न कुछ उठा करके बोल के आगे बढ़ते हैं, ऐसा लिखते हैं जगदीश ठाकुर इस श्लोक में नहीं, पिछले श्लोक की कुछ व्याख्या में। उसको कर्मवाइज नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि कितना है, एक दो चार दस पचास होता है, एक हजार होता तो गिना लेते थे मान लीजिए, सुखदेव गोस्वामी पद बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन अनंत, ये तो अनंत दुख में गिरे हुए और फिर भी सुख बुद्धि हो रहा है। श्रील प्रभुपाद महाराज के पटपट में थोड़ा जाए, क्योंकि श्लोक में तो बहुत कोई व्याख्या नहीं दिए कोई आचार्य, हम लोग चलते हैं अपने आचार्य अपने सेनापति के पास, है ना। वो कहते हैं कोई भी प्राणी कुटुंब जीवन में सुखी कभी नहीं हो सकता। तो जो सुखी है वो क्या है, वो केवल भ्रांति मात्र है। इसलिए उन्होंने लिखा ना क्या तातल सेंकते वारी बिंदु सम, तातल सेंकत बहुत भारी ताप में अगर थोड़ा एक बूंद एक सिंकर जल मिले, उसी प्रकार का कहते सूत मित रमणी समाज, जो पुत्र से सुख मिलना है वो एक सिंकर जैसा है। व्यक्ति को अथाह सुख राशि चाहिए, क्योंकि वो परम सुख राशि के अंशभूत जीव है। उनको थोड़ा बहुत सुख से काम चलने वाला है, लेकिन एक सिंकर बिंदु भी नहीं है। ये तो आचार्य बहुत दया करके लिखते हैं वारी बिंदु सम सिंकर, केवल बहुत भारी प्यास और एक सिंकर जीभ पर आ जाए ठंडे में तो उड़ जाता है, दवा हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्यास है। अनंत सुख की खोज जीव को है, उसमें एक सिंकर वो क्या करेगा। तो शुद्ध रमणी या मित्र समाज है, मित्रों के समूह से मिलने वाला सुख, रमणी से मिलने वाला सुख, तातल से कत बिंदु बारिश। लेकिन हायरे भोगों की कामना ये सब जानते सुनते हुए भी इसके पीछे हम दौड़ते हैं, जैसे मरीचिका के पीछे हरिण भागता है। जान हरिण नहीं जानता है, लेकिन मनुष्य रूपी हरिण के पास बुद्धि है। वो जानता है कि ये मरीचिका जल है, वास्तव में जल नहीं है, और उसमें भगत लोग रोज यहां बोला जाता है। लेकिन अगर लंगड़ो आम मिल जाए, आहा चट्टा का मारेगी लंगड़ो, और केसर कोई लेकर के आया हो गुजरात से, आहा क्या यार है? जैसे कभी नहीं खाया है, पूर्व में कभी टेस्ट ही नहीं लिया है, ऐसा लगता है। अब वही का वही चूसा हुआ आम है, उसी प्रकार ये चमड़े का शरीर चूसा हुआ है, अनंत अनंत जन्म से यही काम किया है। विवेक के व्यक्ति को थोड़ा विचार करना चाहिए क्या अनंत जन्मों से मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन मन अभी भी भरता नहीं, मन कभी भरने वाला नहीं है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह की जो उर्मी उठती है, बुद्धिमान व्यक्ति या धैर्यवान व्यक्ति, यहां कहते गृहित सार, उन सार को जो ग्रहण नहीं कर सके, अगृहित सार उनको ग्रहण नहीं करने वाला व्यक्ति, अग्रहित का अर्थ क्या है, जो धैर्य को धारण नहीं कर सकता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति उनको सहन कर लेते हैं, वो तो उर्मी है। तान तितिक्षव भारत मात्र स्पर्शस्तु कुंती भगवान के सहन करो, बोले क्या करे ये दुख होता है संसार, बोले सहन करो, लेकिन साथ साथ उनको सहन करते हुए उपाय भी करो। केवल सहन नहीं करना है, लोग मूर्ख लोग सहन करते हुए मरते हैं, लेकिन बुद्धिमान या भक्त समूह उनको सहन करते हुए उनका उपाय करते हैं। जो उपाय में लगे हैं वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। हमारे तो बहुत बड़े सेनापति है श्रील प्रभुपाद महाराज, दर काय का है, रक्षक है, लड़ना चाहिए खूब माया से, हार नहीं मान लेनी चाहिए, खूब लड़ाई जारी रखो, क्योंकि सेनापति मजबूत है अपना, है ना, दिक्कत क्या है, आश्रय है, निराश्रय नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ा छत्र निर्माण किया है, खूब लड़ो किले में आकर के, लेकिन उन उर्मियों को परास्त करना चाहिए, वो परास्त हो ही जानी चाहिए, और इसी जीवन में परास्त करे ये ठान लेना चाहिए व्यक्ति को, इसी जीवन में मैं इनको परास्त करके रहूंगा। हाँ, जब आकाश में उड़ी का बोला जाता है ना तो छत तक आ जाता है, क्योंकि लोग कितना ऊपर उठेंगे अपने से, बोले उठो 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 आकाश तक जाओ तो छत तक आ जाता है, ये बात है। जब मृत्यु के ऊपर चल जाते हैं तब बुखार आता है ना, ये संसार है, इस प्रकार का संसार। इसलिए व्यक्ति को डट जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा, ये सब साधु संतों का हुआ है, कुछ हो रहा है, हमारा क्यों नहीं होगा, वाई होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति डट जाए तो सब कुछ कर सकता है। अरे ढीले मांदे ऐसे ही लड़ रहे तो हो गया कल्याण। अब उतरे हैं हम लोग माया के सामने युद्ध करने के लिए और तलवार पकड़े अकेले जैसा, ऐसा थोड़ी काम लगेगा। अरे केला है खाने के लिए, माया बोले तो खा लेगा, अभी वो तुरंत खा लेगी। बहुत पैनी तलवार, उनको हमेशा पैनी रखना चाहिए, श्रवण कीर्तन के द्वारा जितना पैना होगा उन माइक विचारों को और उर्मियों को, उठती हुई उर्मियों को व्यक्ति छट 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 काटता चलता है, देर थोड़ी लगता है, विचार उठाने काटा नहीं, जाओ नहीं करना है, तुम्हारे पर ध्यान नहीं देना है, उर्मियां तो उठेगी, ध्यान देने वाला व्यक्ति फंस जाता है, नहीं ध्यान देना। सेनापति है कि नहीं, रक्षा करेंगे, लेकिन बहादुर सैनिक की रक्षा होती है, जो दूसरे 50 को बचाने वाले हैं ना उनकी रक्षा सेनापति लगा देगा, उनके पीछे रहो आप, उनको बचाते रहो, क्योंकि वो 50,000 आदमी को बचाने वाला व्यक्ति है। यस, उनका बचाव होगा। खैर मैं जल्दी से श्लोक में जाऊंगा, नहीं तो फिर इसी में रह जाऊंगा। तो कहते हैं अग्रहित सार स्व कुटुंब क्रुद्धति, वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है जो अग्रहित सार, लेकिन गृहित सार वो टस से मस नहीं होगा। घर में गाली दे, कहीं पर गाली दे, कुछ भी हो जाए, उनको कोई अंतर नहीं गिरता है। उनका क्रोध, उनका कुछ भी, वो बाहर आउट नहीं हो जाता है। धैर्य है, वो जानता है कि सतपथ पर चलने वाले व्यक्ति की ही जीत होती है संसार में। कुपथगामी व्यक्ति कतई बच नहीं पाएगा। इसलिए सतपथ पर जो व्यक्ति चलता है उनको कोई भय नहीं होता है। हमारे गुजराती कवि की पंक्ति याद आ जाती है, दास सतार, मुस्लिम भक्त हो गए, बड़े कृष्ण भक्त हो गए सौराष्ट्र में। सु पूछो छो मुझने क्यों सू करूं छो, मने जहां गमे त्या हरू छो फरू छो, नथी बिक कोई नी मने आ जगत मा, नथी बिक कोई नी मने आ जगत मा, फकत एक मारा हूं प्रभु थी डरू छो। सु पूछो छो, बोले आप क्या हमको पूछ रहे, क्या क्या कर रहे हैं, कहां जाते हैं है? आप अपना देखिए, सतार बोलते हैं, हमको क्या पूछ रहे कि मैं क्या करता हूं। वो वही बोल सकते हैं, हम लोग नहीं। जो लोग माया पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, स्वरूप भूत व्यक्ति जो है या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो बोल सकता है। और वही इस प्रकार बिंदास विचरण कर सकते हैं। बाकी मायादास उदास, तो थोड़ा सु पूछो जो मुझे बोलेगा तो एक चाटा खींच लेगी माया, पटाख से क्रोध उत्पन्न कर देगी, यह कर देगी, वह कर देगी, जाओ जाओ बेटा जाओ, ये लोग बोल सकते हैं। बोलते हैं, मुझे कोई व्यक्ति का कुछ डर नहीं है, केवल भय है, तो फक्त एक मेरे प्रभु का भय है बस। और ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति शास्त्र के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं। यस, शास्त्र का विधि विधान विधि भक्ति वालों के लिए है। और जो व्यक्ति भावनाओं की उर्मी में, उन भगवत भक्ति की जो वास्तविक उर्मियां हैं, उन भावों में जो अवगाहन करता है, उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद साक्षी है, उन्होंने प्रमाण दिया। लेकिन तिस पर भी भय में रहना चाहिए व्यक्ति को। भरत महाराज के जीवन से शिक्षा मिलती है, श्रील प्रभुपाद महाराज अपने पर्पट में लिख दिए, भाव तक जाकर के भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पर भी सतगुण रहेगा, और जहां सतगुण है रज और तम लगा हुआ है, बिल्कुल सट करके जाने में देर नहीं लगेगा। इसलिए सेनापतियों के आश्रय में व्यक्ति को बिंदास रहना चाहिए, बाकी अकेले नहीं, भक्तियों भक्तों की संगति में बिंदास रहे बस। क्योंकि दूसरे भक्त बताने वाला है, क्या बोल रहा था, सु पूछो चो, क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहा था, सीधा चल, है ना, बताने वाला चाहिए कोई। खैर, अगर हम लोग सक्षम नहीं है तब क्या करना चाहिए, तब बहुत सुंदर श्लोक है मन शिक्षा का। अपने मन को सचेत करते हुए रघुनाथ दास के साईं पाद हम सबको शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, असत चेष्टा कष्ट पद विकट पासली भीड़ इह न प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाती व्यति करे गले बद्वा हन्ये अहम इति बक विद वर्तम अपगणैर कुरु त्वम फुत्कारान अवति स यथा त्वाम मन इति। हे मेरे प्यारे मन और शिक्षा, हे मन इति, इस प्रकार सोचो। किस प्रकार सोचे, बोले देखो मन तुम ही मेरा हृदय हो ना, मन और हृदय एक ही है, तुम तो मेरे मन हो और तुम ही मेरे हृदय हो। हा? देखो उर्मिया कहां उठती है, तुम में उठती है। हा? वो कहते असत चेष्टा रूपी पास, माया का जो पहलू है पास है बंधन, असत चेष्टा वो कभी नहीं होनी चाहिए भक्तों के जीवन, लेकिन कहते हो जाए तभी भी घबराना नहीं है, सेनापति लोग है। वो कहते असत चेष्टा कष्ट पद विकट पासली भी ये प्रकामम कामादि, कहते प्रकृष्ट रूपेण ये काम क्रोध मद लोभ मोह अपना रस्सा मेरे गले में डालता है। मन तुम विचार कर कि गले में रस्सा पड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि का रस्सा गले में पड़ा हुआ है, और कहते हैं तुम देखते हो कि मुझे मारने के लिए तैयार है। और कहते हैं ये सब प्रकटित रूप में व्यति कर रही, सामूहिक रूप में जब चोर मिलकर के चोरी करते हैं तो ऐसा काम करते हैं, षड रिपु छे ये दुश्मन है, काम करो तुम लोभ मोह, षड रिपु को बस कर रंग में रमे भूप खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे सुख दुख में समता साध रहे भूप खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकी। इस संसार में रहते हुए लोग सुखी है, परमानंद में निमग्न कैसे रह सकते हैं। षड रिपु को बस कर रंग में रमे, ये जो दुश्मन है उनको वशीभूत करके साधु लोग सुख में रह सकते हैं, इस संसार में सुख में रह सकते। शरीर त्याग करके तो बहुत मुक्त होते हैं, जीते जी मुक्त होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा निखिला व्यवस्थासु, कैसे लोग जीवन मुक्त से उच्चते। कहते हैं जिनका मन वाणी और कर्म हमेशा भगवान में लगा हुआ है वो तो जीते जी मुक्त है, उनको मुक्ति के लिए मरने की आवश्यकता। संतुष्टि का सुख का समुद्र उमड़ रहा है हृदय में, लबालब संतुष्टि भरी हुई है, दुख किस बात का है। लेकिन आचार्य हमारे आचार्य शिक्षा देते हैं कि कतई गर्व में नहीं रहना चाहिए, भले ही दूसरे लोग पंक्ति गाए लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, बोले इकट्ठा मेरे गले में सब लोग पासा डाल के हन्य हमिति मुझे मारने के लिए तैयार है, लेकिन सामने बकभिद वर्तमान अपगणे, उन बकासुर के वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जो मार्ग के रक्षक भक्त लोग है ना, वो है ना, क्या फिक्र है। हम भले ही दास सतार की तरह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज है, हमारे रूप सनातन है, ये सब हमारे हैं। लेकिन कब कह सकते हैं, जब एक सेकंड के लिए भी उनका आश्रय नहीं त्यागेंगे तब। जो त्यागने वाले लोग है, कभी इधर उधर हो भटकने वाले लोग है, वो उनको रक्षा नहीं मिलेगी, आचार्य का कृपा नहीं मिलेगा 100%। जो लोग एकाकी आश्रय है, वो एक ही इस संस्था का आश्रय लिया है, सेनापति रक्षा करेंगे। कहते हैं बकभित वर्तमान अपगणे कुरुत्तम फुत्कारान अवती, केवल तुम बस अत्यंत कातर होकर के उनको पुकारो, वो तुम्हारी रक्षा निश्चित कर लेंगे। डर कोई बात का नहीं है, भवातवी से डरने का जरूरत नहीं है, हम बिंदा आठवीं में हैं, है ना, कोई डर नहीं है, क्या डर है। मां की तरह गोद में पालन करने वाली बिंदा आठवीं है, और उसमें भी सेनापति लोग हैं, और यही हमारे रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि यहीं पर भजन करके इन श्लोकों की रचना करके गए हैं। भय किस बात का है? निर्भय होकर भजन करना चाहिए व्यक्ति को, बिल्कुल सर उठा करके है? और मैं कृष्ण का दास हूं, बस माया क्या करेगी है? और हमारे रक्षक भक्तगण है, सेनापति लोग है, क्या करेगी भाई है? वो कहते यथा त्वाम, कहते हैं हे मन, वो वही तुम्हारी रक्षा करने वाले लोग हैं, रक्षक है, इसलिए उनका आश्रय लो हा? और तुम लोग आगे बढ़ो। दूसरा एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रतिष्ठा सा दृष्टा सपच रमणी मैं हृदय नटे, तो बहुत सुंदर श्लोक। अगर कोई व्यक्ति बच जाता है तो प्रतिष्ठा रूपी पिचासी जब तक हृदय में नाच करती है, मेरे मन कहते हैं मेरे मित्र है मन, तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठा रूपी डाकिन नाच रही है। कोई मुझे अच्छा भक्त कहे, कोई बोलो फाइन प्रवचन करने वाला कहे, प्रतिष्ठाशा ये पिचासी जब तक नाच करती है, कहते हैं दृष्टा स्वपचरमणी अत्यंत तो दृष्ट है, वैसे हटने वाली नहीं है, ये अंतिम फंसा है माया का। लेकिन हमारे आचार्य क्या उपाय दिए उससे बचने के, वो कहते है? कहते मैं हृदय नटेट कथम साधु प्रेमा स्पृशति, पर हाय रे मेरे पास साधु जन है फिर भी मैं उन साधुओं से प्रेम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि प्रतिष्ठा रूपी एक डाकिन मेरे हृदय में, एक पिचासी मेरे हृदय में नाचती है। हा उनको त्याग करके व्यक्ति को बलवान बनना चाहिए। मैं कल आया हुआ नया भक्त हूं, भले ही 40 साल पुराना भक्त हो, सोचना चाहिए मैं कल आया हूं, सबको अधिकार है मेरे पर, मुझे कोई भी डांटे फटकारे नो प्रॉब्लम है, उनका अधिकार है, वही अधिकारी व्यक्ति है। बाकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है संसार में है? हम लोग इस भवातवी में हैं, भले ही वृंदावटवी का आश्रय लिया है, याद रहे एक जन्म फिर भी जाएगा, कदाचित मरेंगे तब, अगर बच्चे लोग हॉस्पिटल में बुला लिया मुंबई या दिल्ली गए काम से, जाओ हरी बोल। माँ की तरह पालन करने वाली ये अटवी है, माता की तरह। एक दिन दो तीन श्लोक मैंने बोला था, प्रबोधानंद सरस्वती बाद में लिखा उस श्लोक, वो कहते कथम साधु प्रेमा स्पृशति सुचित एतन ननु मना, ए मन वास्तव में तुम विचार कर कि जब तक वो नट्टी की तरह एक कहते हैं पिचासी नाच रही है प्रतिष्ठा रूपी, तब तक साधु कैसे तुमको प्रेम करेगा? इसलिए उनको त्याग है मन, उनको जल्दी से त्याग दो, इन प्रतिष्ठा का त्याग कर। बहुत सुंदर बात लिखते हैं, सदा तुम सेवस्व प्रभु दयित सामंतम अतुलम, जितना अप जिनका अपरिमेय बल है, ऐसे महान जो भगवान के भक्त लोग हैं प्रभु गण है, वो कहते हैं वो प्रभु दयित भगवान के प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर के तुम सदा उनकी सेवा करो और सदा उनका स्मरण करो, नित्य प्रति व्यक्ति को उन महान सेनापतियों के समाधि मंदिरों में जाकर के माथा टेकना चाहिए नित्य प्रति। ये आचार्य गाते हैं, पहले आचरण करके गाते हैं, रोज 2000 वैष्णवों को प्रणाम करने वाला व्यक्ति का यह वाक्य है। हम तो ऐसे बोल दिया, हम तो कुछ करते बरते नहीं है, बोल दिया, लेकिन वो कहते हैं जगह पर वहीं पर याद करके समाधियों का स्मरण करके वहीं पर प्रणाम करके रक्षा कीजिए, रक्षा मेरा रक्षा होना चाहिए, मेरा रक्षा होना चाहिए है? अपने भजन की कोई ताकत नहीं है, जो उस गर्व में रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा साधक हूं वो मारे जाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा रूपी पिचासी उनको छोड़ती नहीं है। लेकिन उन आचार्यों की शरण लेकर के उनको बारंबार प्रार्थना की जाए, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, आप जैसा सेनापति होते हो भी मर रहा हूं, लेकिन एकांतिक भाव रखना चाहिए हमारी परंपरा में, भूल से भी कहीं नहीं जाना चाहिए, भूल से भी उन लोग को रक्षा मिलती है, याद रहे। इधर अच्छा प्रवचन, उधर अच्छा हो रहा है, उधर अच्छा हो रहा है, गए काम से। एकांतिक भाव से एक आश्रय करके व्यक्ति अगर साधन करे, यही प्रसिद्ध हो गए व्यक्ति। रूप सनातन जैसे और उनके फॉलोअर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे और शील प्रभुपाद जैसे महासेनापति आकर के प्रचार किया है, इस मार्ग में क्या कमी है, क्या कमी है इसमें? कमी केवल हमारे हृदय में, अभाव अभाव अभाव, कथा का भी अभाव महसूस करते हैं। हाँ? कोई अभाव नहीं है, इतनी कथा पड़ी हुई है, कहीं पर कोई अभाव नहीं, धैर्य के साथ बैठ करके श्रवण करते रहना चाहिए। और एकांत आश्रय करने वाले व्यक्ति कहते सदा तुम सेवस्व, उन प्रभु दैता भगवान के अति प्रिय जो सामंत लोग हैं, उनके सेनापति लोग हैं, वो अतुलनीय बलशाली है, उनका आश्रय उनकी समाधि में जा जा करके माथा टेकते रहना चाहिए, प्रणाम करते रहना चाहिए। यथा त्वाम निष्काश न त्वरितम इहतम वेशयति च, बोले वो तेरा तारण निश्चित करेंगे, और तारण नहीं कृष्ण प्रेम महासंपत्ति रूपी गिफ्ट भी मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।